यम और नियमों की बात है, प्रातःकाल कही गई थी और फिर भी वो बात बार बार कही जावे तो कोई हर्ज की बात नहीं, किंतु वो सार सार बात ही आपको बतलाई जाती है और उनके पालने से बड़ा भारी लाभ बतलाया है। यम का मतलब है अहिंसा सत्यस्तया ब्रह्मचर्या परिग्रह यमहा, इन पांच का नाम यम है, इनको महाव्रत भी कहते हैं। पहली बात है अहिंसा, दूसरी बात है सत्य बोलना, तीसरी बात है चोरी नहीं करना, चौथी बात है ब्रह्मचर्य का पालन करना और पांचवी बात है परिग्रह का त्याग करना। संक्षेप से बतला देता हूँ आपको, पांच ही नियम है, वो सूत्र ऐसा है, सो संतोष सदस्य स्वाध्याय ईश्वर प्रेरणा नियम, बाहर और भीतर की पवित्रता, इसका नाम सोच है, और दूसरा नियम है संतोष, ईश्वर की इच्छा से जो आकर प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करना, उसमें आनंद मानना, ये संतोष है, और अपने धर्म के लिए कष्ट सहन करना, इसका नाम तप है, और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, इसका नाम स्वाध्याय है, और ईश्वर के नाम का जप और ध्यान करना, ये ईश्वर परिधान है और इसी को ईश्वर की भक्ति भी कहते हैं। तो ये पांच नियम है, पहले जो पांच बतलाए यम, ये पांच नियम, तो पांच नियमों के पालन करने से ईश्वर की भक्ति अपने बिना करे करें, तो इस विषय में ये बात है कि इसके अंतर्गत ईश्वर की भक्ति है। पांच जो नियम है, पांचवा नियम जिसका नाम खुद ईश्वर परिधान है, उसका मतलब ही है कि ईश्वर की भक्ति। तो ईश्वर परिधान तो यम और नियमों का खास अंग है। यहाँ तक बताया शास्त्रों के मां कि समाधि सिद्धि ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, मैंने ईश्वर की भक्ति से, तो केवल ईश्वर की भक्ति से थी कार्य की सिद्धि हो जाती है। और ये जो है कि यम और नियमों का जो पालन है, ये हमारे लिए भक्ति में बहुत सहायक है। जैसे गीता के माँ, गीता की 16वीं अध्याय के माँ आरंभ के 3 श्लोकों में 26 लक्षण बतलाए हैं, 26 लक्षण, वो एक प्रकार से यम नियमों का ही विस्तार है। तो ये जिसके माँ होते हैं उसके लिए भगवान ने ये बात बतलाई है कि महात्मा नस्व मांग पार्थ है देविंग प्रकृति माश्रित भजंत नन मनसो ज्ञातवा भूतादि मध्यम। ये गीता की 9वीं अध्याय का 13 का श्लोक है कि देवी संपदा को प्राप्त हुए महात्मा जन अनन मन से भगवान कहते मुझको भजते हैं, महात्मा नस्तु मांग पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता, देवी जो संपदा है उसको आश्रय करने वाले महात्मा जन मुझको अनन मन से भजते हैं। ज्ञातवा भूतादि मध्यम, भूतों का आदि और अविनाशी जान कर करके अरे मुझको अनन मन से भजते हैं। तो समझना चाहिए कि देवी प्रकृति के जो 26 लक्षण जो बताए हैं गीता की 16 अध्याय के आरंभ के 3 श्लोकों के माँ, वो एक प्रकार का विस्तार है, वो 26 बात बताई है, जो यम और नियम तो 10 ही है और वो 26 बात है, वो प्राप्त होने पर ऐसा जो पुरुष है वो तो भगवान को भजता ही है, यानी भजते ही है, दो वचन के वहां बजते ही है, एक वचन बजता ही है। अब ये बात है कि पहले तो यमनियमों का साधन किया नहीं और अब केवल भगवान की भक्ति की जावे तो एक प्रकार से वो हो सकती है कि नहीं, तो हो सकती है। यम और नियम यदि साथ में होवे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होवे तो केवल भगवान की भक्ति से ही सारे कामों की सिद्धि हो सकती है। यम और नियमों का पालन करने वाला भगवान की भक्ति करने से भगवान को प्राप्त हो जावे, इसमें तो कहना ही क्या है। इसके विपरीत जो दुराचारी पुरुष है, पापाचारी पुरुष है, अब वो भी भगवान की अनन मन से भक्ति करने वाला है तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। आज वो पापात्मा है, उसके माँ पापों का ही समझो कि अपने संग्रह है, किंतु याद रखो पापों का नाश होकर के और जो देवी संपदा के उनमें लक्षण आ सकते हैं। यम और नियम भगवान की भक्ति के प्रभाव से आ सकते हैं। भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान, यही है ईश्वर की भक्ति के दो प्रधान अंग। महर्षि पतंजलि ने भी ये बात कही है और हमारे शास्त्रों में और भी जगह ये बात आती है। तो भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से भी सारे पापों का नाश होकर के और सारे दुर्गुण और दुराचारों का नाश होकर के और उसके मां देवी संपदा के लक्षण अपने आप ही आ सकते हैं। भगवान ने खुद गीता में कहा है, अति चेष्टु दुराचारो भजते माम अनन्यवाद साधु रेव समंत समक व्यवस्थित क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सत शांति निगच्छति कौन ते प्रतिजानी ही नैमि भगत प्रणश्यति। तो ये गीता की 9वें अध्याय के 30 और 31 के श्लोक हैं। इनका भाव यह है कि जो मुझको अनन्य भाव से भजने वाला है, जो एक निष्ठ होकर मेरा भजन करने वाला पुरुष है, वो अतिशय दुराचारी भी क्यों नहीं हो, वो क्षिपण बहुत ही धर्मात्मा शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। अतिशय दुराचारी कहते हैं कि अपित सुदुराचार, एक तो दुराचारी हो और एक सुदुराचार माने बहुत भारी पापी, झूठ कपट चोरी व्यभिचार करने वाला ऐसा पापी पुरुष भी क्यों नहीं हो, वह पुरुष भी शीघ्र ही सदाचारी ऐसो बन जाता है। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। और उसने ये निश्चय कर लिया है कि वो मूल परमात्मा में निश्चय वाला है। सम्यक व्यवस्थित हो माने वह पुरुष है, सम्यक माने अच्छी प्रकार से थी, मुझ परमात्मा में निश्चय वाला है, वह एक निष्ठ है, इसलिए उसको फिर साधु ही समझना चाहिए। इतना ही नहीं कि वो धर्मात्मा ही बन जाता है तो वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जो शाश्वत शांति है, जो सदा रहने वाली शांति है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो शांति मिलती है वो शाश्वत शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मेरे भगत का कभी पतन हो ही नहीं सकता। तो इस बात को ख्याल में रखकर के एक प्रकार से पापी जो पुरुष हम लोगों के मन है उनको भी भगवान आश्वासन देते हैं, इसलिए हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे कितने भी पाप क्यों नहीं हो। भगवान के यहाँ ये नियम है, हमारे इस गवर्नमेंट के राज के मां भी कानून है कि जो गवर्नमेंट का विरोधी है और गवर्नमेंट के कानून का विरोध करता है और वो भी फिर आगे जाकर गवर्नमेंट की शरण चला जाता है, वोट भर देता है कि मैं आगे के लिए प्रतिज्ञा करता हूं कभी पाप नहीं करूंगा, तो सरकार मुझको माफ कर दे और मैं कभी जो है सो गवर्नमेंट की कानून के खिलाफ नहीं चलूंगा, कानून नहीं तोड़ूंगा। तो इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा करता है तो गवर्नमेंट भी उस पर दया कर करके उसके अपराध को क्षमन आपने कर देती है, ऐसी बात भी आपने होया करती है। जब भगवान तो परम दयालु है, भगवान की कोई शरण हो जावे, अनन शरण हो जावे या अनन भक्त बन जावे, और ये इस बात के वास्ते वो अपने मन में निश्चय कर ले है, तभी वो भगवान का भक्त या भगवान की शरण सुन लिया जाता है। और भगवान की आज्ञा का भंग करे और भगवान की आज्ञा को तोड़े तो वो भगवान का भक्त नहीं समझा जाता। पूर्व में उन्होंने चाहे कितने पाप किए हैं और कितनी दफे भगवान की कानून का भंग किया है, किंतु आगे के लिए जब वो भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान उसको माफ कर देते। तो इस बात को ख्याल में रख कर के हम सब लोगों को इसके विषय के बीच के वहाँ एक प्रकार से खास मानना चाहिए कि जो ऐसे ऐसे पापियों का उद्धार हो जाता है तो भगवान के घर के ऊपर समझो कि हमारा भी अधिकार है, अनधिकार होते हुए भी अधिकारी हैं, क्यों भगवान की कानून ही ऐसी है। देखो कि बाली कितना भारी पापी था, वो भी एक प्रकार से मुक्त हो गया भगवान की कृपा के प्रभाव से। बाली ने भगवान को तलब करते हुए पूछा है, बाली ये तो कहता है तुलसीकृत रामायण के किष्किंधा कांड के मां धारण हे तू अवतारे गोसाई मारे हूँ मोही व्याद की इनाई शिवनाथ, आप धर्म की मर्यादा बांधने के लिए आपने अवतार लिया है, आप इस संसार में प्रकट हुए धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए, किंतु आपने मुझको एक जैसे ज्यादा कोई मृग को मार डाले हिरण को मार डाले इस प्रकार से थी आपने मुझको मार डाला। इसके पहले की चौपाई में और भी थोड़ा रहस्य है। ऋगव प्रीति मुख बचन कठोरा बोले चिदई राम की ओ बाली के बाण लगा तो बाली एक प्रकार से थी गिर गया, शेर एक प्रकार से बैठा होकर करके और राम की तरफ देख कर करके और राम की ओर देखता हुआ ये बात बोला कि आप जिस बाली के हृदय के मां तो प्रीति थी और बाणी जिसकी कठोर थी, ऐसा जो बाली है उसने ये बात कही। क्या बात कही कि धर्म हेतु अल तरु गुसाई और मारे मोही व्याध की नहीं, धर्म की मर्यादा बांधने के लिए आपका अवतार हुआ है, किंतु आपने मुझको एक दादा जैसे मृग को मार डाला, ऐसे आपने मुझको छिप करके और वृक्ष की ओट में छिप करके आपने मुझको मार डाला। फिर पूछते मैं बैरी सुगरी वे प्यारा और कारण कवन मोही प्रभु उमारा आपका बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझको किस काल में सो मार डाला। इसके उत्तर के बीच के वहां भगवान जैसा प्रश्न है उसी के अनुसार उत्तर दिया। अनुज बैदूनी सूत नारी सथ कन्या यम सारी भगवान बोले बाली को, अरे मूर्ख है यानी सठ है, तू सुन, छोटे भाई की स्त्री और अपनी बहन और अपने लड़के की स्त्री और अपनी कन्या, ये चारों समान है, ये चारों कन्या के तुल है। या को कुदृष्टि विलोकगी जो ही कुदृष्टि विलोकगी जो ताई बदे कछु पापन हो एक ही है, या को कह दो या ही कह दो, और दोनों के उनसे ही ब्राह्मणों के वहां पाठ भेद अनेक प्रकार के मिलते हैं, तो ख्याल करना चाहिए कि इन चारों को अपने भाई के स्त्री, पुत्र की स्त्री, अपनी बहन और अपनी लड़की, इन चारों को कोई बुरी दृष्टि से देखता है या न अश्लील भाव से देखता है या न एक समझो कि पाप बुद्धि से देखता है, उसे वो को कोई मार डाले, उसका उसकी कोई कत्ल कर दे है, तो कत्ल करने वाले को पाप नहीं लगता। इन चारों में एक या दो या किसी के साथ में भी जो कुकर्म करता है वो बुद्ध के योग है, और वो काम करने की योग तेरे छोटे भाई सुग्रीव की जो स्त्री उसके साथ में तेने बलात्कार क्यों, इस वास्ते तेरे जैसे पापी को मारने में कोई भी पाप नहीं है। फिर कहते हैं कि मुझे भूजे बेले आश्रित दे जानी चरसी अधम अभिमानी और भी एक छुपाई कही है वो इस प्रकार से इसी के साथ क्यों है, अरे सात तो ही अतिशय अभिमान करसिन काना मुझे बुझे बन आश्रित थे जानी सरसी अगम अभिमानी मारा कहते हैं बाली को, अरे सख है तो अतिशय अभिमाना, अरे मूर्ख है तेरे को अतिशय अभिमान हो गया। नारी सिखावन करसी निकाना, तेरी जो स्त्री तारा है उसने तेरे को उपदेश दिया, तेरे को ये बात जना दी कि सुग्रीव के साथ मदद करने वाले जो हैं, वे बड़े भारी समझो बल के साग हैं, किंतु तेने तो ध्यान ही नहीं दिया। मूर्ख एक प्रकार, अरे सख, अरे अभिमानी, अरे अधम नीच, तू मेरे भुजा के बल के आश्रित समझ करके भी फिर उसको मारना चाहता है। जब ये बात कही तो बाली समझ गया कि भगवान के सन्मुख चतुराई करने से काम नहीं चलेगा, या तो सरल होकर के एक प्रकार से अपने भगवान की शरण होने से काम चलेगा। तब वो बाली जो जिसकी वाणी बड़ी कठोर थी, बहुत ही कोमल वाणी हो गई और भगवान की शरण होकर के बाली ऐसो कहा, सुनहू राम स्वामी सुभग चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहु मैं पाकती अंत काल गति तोर सियावर। गदगद होकर के और बाली ऐसा बोला, सुनो ये सुनो के माँ ऐसा स्वारस्य है कि हे राम, या हमारे मालिक थोड़ा ध्यान देकर हमारी बात को सुनो तो सही। सुनो राम स्वामी, सुनो राम स्वामी सुग है, सु मन उत्तम मार्ग के में चलने वाले सुग है, यानी हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप मेरी बात को तो ध्यान देकर के सुनो। आपके सम्मुख मेरी चतुराई नहीं चल सकती। क्या प्रभु, अधहू में पात की, अधहू में अधहू के मां भी स्वार्थ भरा हुआ है, मैं पापी तो था, इसमें कोई शंका की बात नहीं, किंतु जब आप हमारे सन्मुख विराजमान हो रहे हैं, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ मरने के समय के बीच के माँ, अब आपके सामने हूँ तो क्या अब भी मेरे पाप बाकी है जो आप मुझको अधम कह रहे हो। प्रभु अधमू ने पाप की और अंत काल गति तोड़, अंत समय के माँ जब आपके चरणों में मेरी गति है तो क्या मैं अब पापी रहा। ये बाली की प्रेम भरी वाणी को सुनकर के, विनय युक्त वाणी को सुनकर के, जो अति एक प्रकार से थी मृदु जो वाणी है, कोमल जो वाणी है सुनकर के भगवान भी पानी पानी हो गए, और हाथ का नाम भी पानी है, अपना जो हाथ है उसके मस्तक के ऊपर रख। सुनत राम अति कोमल शीस परसानी जय पानी, सुनते सुनत का भी बड़ा स्वारस्य है, सुनत माने सुनने के साथ ही, एक क्षण का विलंब नहीं। सुनते राम अति कोमल वाणी, भगवान राम जो है बाली की अति कोमल वाणी को सुनने के साथ ही, बाली की वाणी जो बड़ी कठोर थी वो अति कोमल हसो हो गई। तो सुने तो राम अति कोमल वाणी, क्या किया राम ने कि बाली शीश परसा निज पानी, बाली के शीश के ऊपर अपने हाथ को रख दिया, हाथ से बाली के मस्तक को स्पर्श किया भगवान ने, और भगवान बोले, अथल करहू तन राखहू प्राण, सुन कृपा निधान। भगवान उनके मस्तक के ऊपर हाथ रख करके और बोले कि मैं तुम्हारे को समझो कि रख दूं, तुम्हारे प्राणों को रख दूं और अचल बना दूं, सदा के वास्ते तुम्हारे को कायम कर दूं। अचल करो तुम राखो प्राण, मैं तुम्हारे प्राणों को रख दूं, अचल बना दूं। इसको सुनकर के बाली उत्तर देता है। बाली कहा सुनो कृपा निधान, हे कृपा के निधान मेरी बात को सुनो। बाली ने कहा, बाली बोले कि हे कृपा निधान मेरी बात को सुनो। बाली कह रहा जनन जनन मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही, भी ऐसा मिलता है। एक तो ये कि अंतराम कहीं आवत नहीं, एक ये कि अंतराम कहीं आवत नहीं, कहीं और कहीं, तो यहाँ अर्थ का भेद पड़ जाते। इसका ये अर्थ लगाते हैं कि मुनि लोग जन्म जन्मांतर में जन्म जन्म के बीच के मां प्रयत्न करते रहते हैं, तभी अंतकाल के मां भगवान राम नहीं आते। तो ये अर्थ ठीक नहीं, क्यों कि जन्म जन्म के मां मुनि लोग यत्न करते हैं और फिर भी राम नहीं मिलते नहीं आते, तो फिर तो राम के आने का कोई उपाय ही नहीं रहा। तो ये नहीं, माने आपकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग जन्म जन्म के मां यत्न करते हैं, सब आपके दर्शन होते हैं, सब आप मिलते हैं, और आपके नाम की इतनी महिमा है कि मरने के समय में राम इतना कह के जो यहाँ विदा होता है वो फिर लौट कर संसार के मां नहीं आता। अंत के समय में राम ऐसा कह के जो विदा होता है वो फिर लौट करके नहीं आता। ये आपकी नाम की महिमा है। और भी जासु नाम बल शंकर एकासी, सब ही सम गति अविनाशी, जिसके नाम के बल के ऊपर, यानी जिस राम नाम के बल के ऊपर काशी के मां शिवजी सब कोई को समान भाव से अविनाशी गति देते हैं, जिसके नाम के बल पर शिवजी महाराज जो है काशी में जो राम नाम के आधार के ऊपर और सबको समान भाव से, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी कोई भी क्यों नहीं हो, सबको अविनाशी गति देते हैं, ऐसे आपके नाम की महिमा है। फिर आपकी तो बात ही क्या है। ऐसे जो आप जिसके नाम की ये महिमा और जिसके ध्यान के लिए मुनि लोग प्रयत्न करते हैं तब आपके दर्शन होते हैं, और जिसके नाम के बल के ऊपर शिवजी काशी में अविनाशी गति देते हैं, वे ही राम आज मेरे नेत्रों के सम्मुख मम चरण गो चर सोही आवा। सो प्रभु बनाए बनावा बहुरी की ऐसे प्रभु बहुरी की प्रभु ऐसे अर्थ एक ही हो जाता है। कहीं तो पाठ बहुरी की प्रभु ऐसे बहुरी की ऐसे प्रभु दोनों क्रम से पाठ मिल जाता है, इसलिए अर्थ एक ही होता है तो कोई आपत्ति की बात नहीं। तो यहाँ ये अर्थ